ओम ओम ओम। दैया परिवार तथा प्रेमपुरी आश्रम संयुक्त आयोजित गीता चिंतन माला के अंतर्गत एकादश दिवसीय सायंकालिक प्रवचन का आज पांचवा दिवस है। आदिगुरु भगवान शंकराचार्य जी द्वारा विरचित वाक्यवृत्ति के आधार पर वेदांत विचार चल रहा है। अभ्यास के लिए बारहवां श्लोक होगा। सत्यानंद स्वरूपम धी साक्षिणम बोध विग्रहम चिंतयात्मतया नित्यम त्यक्त्वा देहातिगाम धियम रूपादी मान्यतः पिंडस ततो नात्मा घटाधिवत वियदादी महाभूता विकारत्वाच्च कुंभवत् अनात्मा यदि पिंडो अयम् उक्त हेतु बलान्यतः करामलकवत् साक्षात् आत्मानं प्रतिपादय घटद्रष्टा घटाद् भिन्नः सर्वथा न घटो यथा देहद्रष्टा तथा देहो नाहम् इत्यवधारय। एवम् इन्द्रियदृङ्णाहम् इन्द्रियाणीति निश्चिनु मनो बुद्धिस्तथा प्राणो नाहम् इत्यवधारय। संघातोऽपि तथा नाहम् इति दृश्य विलक्षणम् द्रष्टारम् अनुमानेन निपुणम् संप्रधारय। हा तो प्रसंग चल रहा है, शिष्य गुरु से ये पूछता है कि महाराज आपने कहा संसार बंधन अर्थात भव बंधन से आसानी से मुक्त होना चाहते हो, छूटना चाहते हो, वाक्यार्थ ज्ञान का आश्रय लेना चाहिए। वाक्यार्थ ज्ञान के आश्रय से ही अनायास सहज रूप में आसानी से भवबंधन से मुक्त हो सकते हो। इस बात को सुनने के बाद शिष्य के मन में प्रश्न उठे हैं बहुत से। शिष्य ये पूछता है कि महाराज, हमको तो पदार्थ का ही ज्ञान नहीं है, तो वाक्यार्थ का ज्ञान कहां से होगा, कैसे होगा? क्योंकि वाक्यार्थ ज्ञान के लिए पहले पदार्थ ज्ञान होना बहुत जरूरी है। नौवें श्लोक के द्वारा शिष्य ने यही बात कही है गुरु से। पदार्थमेव जानामि न अद्यापि, हम तो आज तक पद का अर्थ ही नहीं जान रहे हैं, तो वाक्य के अर्थ जानने का तो कोई प्रश्न ही नहीं। सत्यम महा, तुम ठीक कह रहे हो, वाक्यार्थ ज्ञान के लिए पहले पदार्थ का ज्ञान होना चाहिए। वाक्य के अर्थ जानने के लिए पहले पद के अर्थ जानना जरूरी है, तुम ठीक कह रहे हो। इस 11वें श्लोक से लेकर 27 श्लोक तक वेदांत के प्रक्रिया के अनुसार इसको पदार्थ शोधन कहा जाता है। और ये 11वें से लेकर 27 तक तुम पदार्थ का शोधन बता रहे हैं। कल भी हमने संकेत किया था ना, तत्त्वमसि, इस वाक्य में तीन पद हैं। कल भी संकेत किया था ना, तत्त्वमसि, ये सामवेद का महावाक्य है। इस महावाक्य में तीन पद हैं। पहला पद है तत्, दूसरा पद है त्वम, और तीसरा पद है असि। यहां त्वम पद का अर्थ बताया जा रहा है, इसको पद त्वम पद अर्थ शोधन कहा जाता है, पदार्थ शोधन। पदार्थ माने पद का अर्थ, पदार्थ माने घटपट आदि पदार्थ नहीं समझ लेना, श्रीखंड वासुदी आदि खाद्य पदार्थ नहीं समझ लेना, पद का अर्थ। तो गुरु ने कहा कि बेटा कैसी बात करते हो तुम, त्वम पद के अर्थ को आज तक मैं नहीं जानता हूं, ये जो तुम बोल रहे हो ये बड़े आश्चर्य की बात करते हो। ग्यारहवें श्लोक में कहा, अंतःकरण तद्वृत्ति साक्षी चैतन्य विग्रह, तुम्हारे पास अंतःकरण है, मन बुद्धि चित्त अहंकार, और उस अंतःकरण की वृत्ति भी है, बनती रहती है, नष्ट होती रहती है। अंतःकरण यथावत बना रहता है, अंतःकरण की वृत्ति उत्पन्न होती रहती है और नष्ट होती रहती है। और अंतःकरण और अंतःकरण की वृत्ति दोनों को जानने वाला साक्षी चैतन्य, वह उसी अंतकरण में विद्यमान है। चैतन्य विग्रह साक्षी, चैतन्य विग्रह, विग्रह माने सामान्यतया मूर्ति को भी विग्रह कहते हैं, भगवत विग्रह, अर्चना के लिए भगवान का जो मूर्ति बनाया जाता है उन मूर्तियों को भी विग्रह कहते हैं। और यहां विग्रह शब्द का अर्थ होता है स्वरूप। चैतन्य स्वरूप जो साक्षी चैतन्य है, जो साक्षी है, आनंद रूप सत्य, वो साक्षी एक तो आनंद रूप है, दूसरा सत्य है। वृत्ति असत्य है, बड़ा सूक्ष्म विचार चल रहा है। अंतकरण की जो वृत्ति है वो वृत्ति असत्य है, क्योंकि उत्पन्न होते रहते हैं और नष्ट होते रहते हैं, उत्पन्न होते रहते हैं नष्ट होते रहते हैं। घटाकार वृत्ति उत्पन्न हुई, घट ज्ञान हुआ, घटाकार वृत्ति नष्ट हो गई। पटाकार वृत्ति उत्पन्न हुई, पट ज्ञान हुआ, पट वृत्ति नष्ट हो गई। वृत्ति असत्य है, लेकिन वृत्ति का जो साक्षी है वो सत्य है। आनंद रूप सत्य सन होता हुआ भी किम न आत्मान प्रपद्यते, ऐसे आत्मा को क्या तुम अभी तक नहीं जानते हो? बड़े आश्चर्य की बात है, बड़ी विचित्र बात पूछते हैं ना। तुम अभी तक, इसका मतलब यह हुआ कि तुम अपनी अभी तक स्वयं को नहीं जानते हो, यही ना बात हुई। अरे सभी को जानने वाले को तुम नहीं जानता हो, ये कहते हो क्या विडंबना है? तुम दूसरे को जानते हो कि नहीं? तुम अपने मकान को जानते हो कि नहीं? अपनी दुकान को जानते हो कि नहीं? अपनी गाड़ी को जानते हो कि नहीं? अपने जूते चप्पल को जानते हो कि नहीं? और इन सब को जानने वाला जो तुम हो, तुम कहते हो कि मैं खुद को नहीं जानता हूं, ये बड़ा आश्चर्य की बात है। इसी बात को और आगे के श्लोक से बता रहे हैं। सत्यानंद स्वरूपं धी साक्षिणं ज्ञान विग्रहं चिंतयात्मतया नित्यं त्यक्त्वा देहातिगं धियं। समस्या ये है कि हम देह और साक्षी को एक बना रहे, देह यानी शरीर, और इंद्रियां अंतकरण, और इन सब का साक्षी, इस सब को हम एक मिला रहे हैं, इसीलिए समस्या है हमारी। सत्य आनंद रूपम धी साक्षिणम, सत्य रूप यानी अबाधित रूप, आनंद रूप यानी सुख रूप, धी साक्षिणम यानी ज्ञान रूप, बुद्धि का भी साक्षी, धी साक्षी, ऐसा जो ज्ञान विग्रह ज्ञान स्वरूप आत्मा है। चिंतय स्वयं को इस रूप में चिंतन करो, निश्चय करो। नित्यम, ये जो विचार है एक सेकंड दो सेकंड एक दिन दो दिन चिंतन करने मात्र से दृढ़ नहीं होगा, इसलिए नित्यम चिंतया। त्यक्त्वा देहादिगम धियम, त्यक्त्वा आत्मानम सत्य स्वरूपम, आत्मानम आनंद स्वरूपम, आत्मानम ज्ञान विग्रह आत्मानम साक्षी स्वरूपम आत्मानम, आत्मतया आत्मानम आत्मतया, ऐसे जो आत्मा है परमात्मा है उसको आत्मतया माने स्वयं खुद के रूप में, आत्मतया का अर्थ खुद के रूप में चिंताया, नित्यम चिंताया, क्योंकि अनादि काल से देह आदि में तुम्हारी जो आत्मबुद्धि हुई थी अविचार से, देहादि में आत्मबुद्धि कोई विचार करके नहीं किया है, अज्ञानियों ने देह आदि में आत्मबुद्धि यानी देह आदि को ही मैं ये जो कहा है कोई सोच समझकर नहीं कहा है, विचार करके नहीं कहा है, प्रमाण आदि का प्रयोग करके नहीं कहा है। अब अविचार से उन लोगों ने कहा है, हम लोगों ने कहा है, और कई ये भी एक दो जन्मों से नहीं, अनादिकाल से अविचार से मान रखा है। अब ये अचानक एकाएक एक दो दिन के अभ्यास से अनादिकालिक अध्यास नष्ट नहीं होता, समझे कि नहीं? अनादिकालिक अध्यास एक दो दिन के अभ्यास से नष्ट नहीं होगा, इसीलिए नित्यम चिंतया, दृढ़ काल पर्यंत दीर्घ काल पर्यंत आत्मानम आत्मत्वेन निश्चय विचार कर, तब तुम्हें स्पष्ट होगा कि तुम पद का अर्थ क्या है, उसी को आगे बढ़ा रहे हैं। इस श्लोक की व्याख्या में एक बड़ा सुंदर योग वासिष्ठ का उस श्लोक को यहां प्रस्तुत किया है टीकाकार ने, गुरु वशिष्ठ जी ने भगवान राम को समझाने के लिए जो बात कही है वह श्लोक इस तरह का है, क्योंकि आदिगुरु शंकराचार्य जी से तो वशिष्ठ गुरु पहले के हैं, तो इसीलिए वशिष्ठ जी ने राम को जो समझाया उसका यहां उदाहरण दे रहे हैं। यह साक्षी लक्षणो बोध तुम पदार्थ सौच्यते। जो अंतकरण इंद्रियां प्राण और अंतकरण की वृत्ति इन सबको जानने वाला जो बोध है यानी ज्ञान है वो बोध ही तुम पदार्थ का अर्थ है, तुम पद का अर्थ है। तुमने कहा ना वाक्यार्थ को जानने के लिए पहले पद के अर्थ को जानना जरूरी है, आज तक हमने पद के अर्थ ही नहीं जाने हैं, तो हमको पद का अर्थ बताइए। तो तुम पद का जो अर्थ है वह यह है कि यह साक्षी लक्षणो बोध स बोध तुम पद अर्थ है। वो बोध ही तुम पद का अर्थ है। तो अब ये नहीं समझ लेना वेदांत के इस वाक्य को सुनने के बाद, ऐसा नहीं समझना मुझे साक्षी का ज्ञान हुआ है, ऐसा अर्थ नहीं करना। यानी मेरे पास साक्षी का ज्ञान है, ऐसा नहीं करना। जैसे कि मेरे पास घट का ज्ञान है आप कहते हो, उसी तरह मेरे पास साक्षी का ज्ञान है, ऐसा नहीं समझ। साक्षी बोध और तुम ये कोई अलग अलग नहीं है। ऐसा नहीं कि तुम अलग हो और साक्षी अलग है, ऐसा नहीं है, और बोध अलग है। तुम्हें साक्षी का ज्ञान हुआ, ऐसा नहीं समझ लेना। जो साक्षी है वही बोध है, जो बोध है वही साक्षी है। बोध स्वरूप साक्षी, और जो बोध स्वरूप साक्षी है वही तुम हो। वही क्या है? तुम हो। यानी तुम पद का अर्थ बोध स्वरूप साक्षी है। साक्षित्वम अपि बोद्धव्यम अविकारितयात्मनः। साक्ष्य विकारी है, ध्यान देने शब्दों पर हम आज विशेष जोर दे रहे हैं। साक्ष्य विकारी है, साक्षी अविकारी है। यहां साक्ष्य क्या है? इस प्रसंग में साक्ष्य क्या है? अंतकरण, अंतकरण की वृत्ति, ये दो क्या है? साक्ष्य है, साक्षी का विषय है, दृश्य साक्ष्य, ये दोनों साक्ष्य जो है वो विकारी है, क्योंकि अंतकरण भी विकारी है, बदलता रहता है, गुण दोषता पंचदशी में स्वाध्याय में आएगा, कल के प्रसंग में आ जाएगा। अंतकरण तो गुण और दोष के रूप में गुणों के प्रभाव से वो बदलता ही रहता है, विकारी है, परिणामी है। और जब अंतकरण ही विकारी है परिणामी है तो उसकी वृत्ति भी विकारी है परिणामी है। लेकिन उसका जो साक्षी है वह अविकारी है। घर में रखी हुई रखा हुआ आम का फल यदि रखे रखे सड़ गया तो क्या सड़े हुए आम को जानने वाला भी सड़ेगा? तो साक्ष्य अविकारी हुआ कि नहीं? आम क्या हुआ? साक्ष्य आम हो गया, साक्ष्य आम को जानने वाला है साक्षी। तो साक्ष्य विकारी है, वह सड़ भी सकता है, बिगड़ भी सकता है। तो आप देखोगे, अरे रे रे, ये आम तो सड़ गया। तो आम सड़ गया तो आपको जानने क्या जो साक्षी है वो तो नहीं सड़ा है ना? आम सड़ गया, तुम तो नहीं सड़े हो, तुम दुखी क्यों होते हो? तुम तो नहीं सड़ रहे हो, सड़ तो आम गया है, तुम तो नहीं सड़ रहे हो, तुम तो उसको जानने वाले साक्षी हो। आम सड़ने से तुम्हारा क्या संबंध है भाई? बोलो, आम के सड़ने से तुम्हारा क्या संबंध है? कोई संबंध? इसीलिए कोई मरता है तो उस मरने के व्यक्ति को तुम जानते हो कि नहीं कि फलाना मर गया? तो मरने वाला तो मरेगा ही, लेकिन मरने वाले को जानने वाला तो नहीं ना मर रहा है, तो तुम क्यों रोते हो? मरने वाले से तुम्हारा क्या संबंध है? बोलो, मरने वाले से तुम्हारा क्या संबंध है? कोई संबंध नहीं। अब यदि कोई संबंध तुम बताते हो तो वो संबंध तो तुम्हारी कल्पना है, काल्पनिक है कि नहीं? बोलो, कोई संबंध बताएगा कि मेरा पति है, ये तो तुम्हारे कल्पना है कि नहीं है? कल्पना है, तुम्हारी कल्पना है। और काल्पनिक संबंध का क्या संबंध माना जाए भाई? तो उससे तुम्हारा क्या बिगड़ने वाला है? किसी कोई बच्चा मर गया, तुम दुखी हो गए, क्यों दुखी हो रहे हो? तुम्हारा क्या संबंध है उस बच्चे से? बच्चा तो मर गया, उसको जानने वाले तुम हो, तुम साक्षी हो कि नहीं उसकी मृत्यु का? तो क्या संबंध हो गया उसका और तुम्हारा? तुम कहोगे मेरा बेटा था। अरे भाई, ये बेटा तो तुम्हारी कल्पना है, संसार में सभी तो तुम्हारी कल्पना है। और काल्पनिक संबंध से साक्षी को क्या फर्क पड़ने वाला है? लेकिन यह अध्यास अनादिकाल से ऐसा दृढ़ कर गया है और ये संबंध बिना विचारे ही हुआ है, विचार के तो ये संबंध जोड़ा नहीं गया है, बिना विचारे। तो इसीलिए भगवान राम को वशिष्ठ जी ने कहा यह साक्षी लक्षणो बोध तम पदार्थ समुच्यते। तम पद का अर्थ बोध स्वरूप साक्षी ही है। साक्षित्वम अपि बोद्धव्यम अविकारितयात्मनः, वो अविकारी है साक्षी, बोध अविकारी है, बोध में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। बोध्य में विकार आने पर भी बोध में विकार नहीं आता, साक्ष्य में विकार आने पर भी साक्षी में विकार नहीं आता, तुम निर्विकार साक्षी हो क्योंकि तुम बोध स्वरूप हो। इस विषय में जो मूल श्लोक में शंकराचार्य जी ने नित्यम कहा है, नित्य यह चिंतन करना चाहिए। इस बारे में टीकाकार ने एक बहुत सुंदर वाक्य यहां लिखी है, नित्यम चिद अनुसंधीन शोको न वद्यते क्वचित, ये भी योग वशिष्ठ का वाक्य है। यहां क्वचित ये अध्याय कर लेना, क्वचित पद का अध्याय कर लेना। नित्य निरंतर साक्षी का चिंतन करने वाला व्यक्ति, नित्यम चित अनुसंधीन, चित चैतन्य अर्थात बोध स्वरूप साक्षी का अनुसंधान करने वाला व्यक्ति को, शोको न वाद्यते क्वचित, कभी भी किसी भी हालत में किसी भी कारण से उसको शोक छू नहीं सकता है। किसको है? हाँ, नित्यम चित अनुसंधान, हम लोग तो जड़ अनुसंधानी है ना, चित अनुसंधानी, हम चित अनुसंधी न होकर हम जड़ अनुसंधी हैं। जड़ वस्तु के बारे में तो अनुसंधान करते हैं, ये कैसे बना, ये क्यों बना, किसने बनाई, किस काम के लिए बनाया, किसके लिए बनाया, कब बनाया, ये सारी चीज जो जिज्ञासा है, विचार है, अनुसंधान है, वह है जड़ अनुसंधान। और इस प्रकार के जड़ अनुसंधान संधि को कभी भी शोक छोड़ नहीं सकता, वो शोक मुक्त नहीं हो सकता जड़ अनुसंधाई। वशिष्ठ जी कह रहे राम को, और इस तरह नित्य चित अनुसंधि है जो, ऐसे चित अनुसंधि न शोको न वाद्यते क्वचित, कभी भी शोक स्पर्श कर ही नहीं सकता है। इसीलिए तो अर्जुन ने गीता में कहा, हे महाराज, मुझे शोक ने स्पर्श कर लिया, शोक ने बाधा पहुंचाई ना, शोक बाधित कर रहा है, और वो शोक मुझे इच्छोक मुस्सो क्षणम इंद्रियाणा, मेरे शारीरिक शक्ति को भी शोषण कर रहा है, सुखा रहा है, मेरे इंद्रिय शक्ति को भी शोषण कर रहा है, सुखा रहा है, मेरे चिंतन शक्ति को भी शोषण कर रहा है, सुखा रहा है। इसलिए शारीरिक शक्ति को सुखा रहा है, इसका लक्षण बताया, बेफतुच्च शरीरे में रोमहर्षश्च जायते, शारीरिक शक्ति को सुखाने वाला लक्षण है ये। देख रहे हो ना, शरीर कांप रहा है, रोवाटे खड़े हो रहे हैं। अब इंद्रिय शक्ति को सुखा रहा है ये लक्षण है। गांडीवम स्रंसते हस्तात्, हाथ में से गांडीव धनुष छूटे जा रहा है। पहले यही हाथ है, गांडीव धनुष कितने दृढ़ता से पकड़ता था, अब यही हाथ है कि उस गांडीव धनुष को पकड़ नहीं पा रहा है। कारण क्या? शोक ने इंद्रिय के शक्ति को सुखा दिया। और इसी तरह बुद्धि के, मन के शक्ति को सुखा रहा है शोक। इसका लक्षण क्या है? यत्रे यस्या निश्चितं ब्रूहि तन्मे, मेरे लिए क्या श्रेय है ये मैं नहीं जानता। अरे भाई, तुम्हारे पास भगवान ने बुद्धि दी है और अब तुम कहते हो कि मेरे लिए श्रेय क्या है मैं नहीं जानता हूं। बुद्धि ना होती तो ये कहना ठीक था कि क्या है मैं नहीं जानता। बुद्धि है तो फिर बोले थी, अभी शोक ने सुखा दिया, निश्चय नहीं कर पा रहा हूं। इसीलिए तुम निश्चय, मेरे लिए क्या श्रेय है ये तुम निश्चय करके मुझे बताओ, क्योंकि मैं निश्चय नहीं कर पा रहा हूं, क्योंकि मानसिक और बुद्धि की शक्ति को सुखा रहा है। और इस शोक को हटाने के लिए मुझे लगता है मेरे दृष्टि में और कोई उपाय नहीं है। राज्यम सुराणाम अपि चाधिपत्यम, मुझे तो लगता है खाली पृथ्वी का साम्राज्य प्राप्त भी होगा तो भी ये अंदर जो शोक घुस गया है वह निकलेगा नहीं। पृथ्वी का साम्राज्य की बात छोड़ दो, राज्यम सुराणाम अपि चाधिपत्यम, स्वर्ग का आप राजा मुझे बना भी दोगे तो भी अंदर से शोक निकलेगा ऐसा मुझे नहीं लगता। तो ये शोक जिस तरह निकल सकता है, ये निकालने का उपाय अति शीघ्र आप करिए, क्योंकि ये शोक मुझे बाधा पहुंचा रहा है, व्यवधान कर रहा है, हर कर्म में मुझे अवरुद्ध कर रहा है ये शोक। तो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन ने शोक निवृत्ति के लिए प्रश्न पूछा, उपक्रम, और शोक को ही प्रश्न के रूप में रखा और शोक निवृत्ति के लिए ही अशोच्यान नन्व शोचस्तम से कृष्ण ने गीता शुरू की। हे अर्जुन, जिसके बारे में शोक नहीं करना चाहिए, जो अशोच्य है, उसके बारे में तुम शोक कर रहे हो। अशोच्य को तो अशोच्य है करके छोड़ देना चाहिए ना। तो अशोच्य दो है, दोनों ही अशोच्य है, आत्मा भी अशोच्य है, आत्मा शोक करने योग्य नहीं है, अशोच्य है। आत्मा शोक करने योग्य क्यों नहीं है महाराज? क्योंकि मरता नहीं है। आत्मा शोक करने योग्य क्यों नहीं है महाराज? क्योंकि वो बिगड़ता नहीं। आत्मा शोक करने वाला योग्य क्यों नहीं है महाराज? क्योंकि वो अघड़ता नहीं। देखो, अरे भाई, चिंता तो तब होती है ना, किसी वस्तु के बारे में चिंता तो तब होती है ना, या तो वो घटता हो तो चिंता होती है। आपका हर साल का बैलेंस शीट का बैलेंस घटता हो तो आपको चिंता होगी कि नहीं है? तो घटता हो तो भी चिंता है। और आपका बनाया हुआ भोजन यदि फ्रिज खराब हो गया और सड़ने लग जाए तो, बिगड़ने लग जाए तो आपको चिंता सताती है कि नहीं है? अरे रे रे रे, बड़ी मुश्किल से आम मगा के केसरपुरी आम ले आए, रस बनाया और आज ही फ्रिज में रखा और आज ही फ्रिज खराब हो गई, तो होने दो ना फ्रिज खराब, उससे क्या फर्क पड़ने वाला। अरे, हमारा आम रस जो रखा है वो बिगड़ जाएगा, तो बिगड़ने से पहले खा डालो। बोले, एक ही दिन में कैसे खाएंगे सब, कल तक बिगड़ जाएगा, एक दिन खाया नहीं जाता है। ले जी, तो बिगड़ने का भी शोक होता है कि नहीं है? बिगड़ जाने का भी चिंता, घटने का भी चिंता और नष्ट होने का भी चिंता। अब आत्मा के बारे में वो चिंता का विषय इसलिए नहीं, क्योंकि एक तो वो नष्ट नहीं होता है, घट नष्ट के तरह वो नष्ट नहीं होता, आम बिगड़ने के तरह, आम रस बिगड़ने के तरह वो बिगड़ता नहीं, बैलेंस शीट घटने की तरह वह घटता नहीं। तो आत्मा अस्वच्छ है। दूसरी बार है, एक बात है कि शरीर वो मरेगा ही, बिगड़ेगा ही, घटेगा ही, है ना? 15 दिन भोजन कम करो तो घटेगा, बिगड़ेगा, नष्ट हो जाएगा। तो ये स्वच्छ, ये भी स्वच्छ नहीं है, क्योंकि नष्ट होना लाजमी है, बिगड़ना अनिवार्य है, घटना अनिवार्य है, क्योंकि ये जड़ है। जो बिगड़ रहा है, बिगड़ने वाला है, उसके बारे में क्या शोक करना है? है? क्यों? वो स्वभाव है, नियम है, नियमित रूप में वो काम हो रहा है। अनात्मा के बारे में भी शोक करना उचित नहीं, आत्मा के बारे में भी शोक करना उचित नहीं। फिर तुम शोक कर रहे हो तो किसके बारे में शोक कर रहे हो? अस्वच्छ के बारे में शोक कर रहे हो। संसार अस्वच्छ है, तुच्छ है, इसलिए अस्वच्छ है। संसार अस्वच्छ क्यों है महाराज? क्योंकि तुच्छ है, क्षुद्र है, तुच्छ है, और तुच्छ के बारे में शोक करना बनेगा? है? सड़ा हुआ आम, सड़ा हुआ आम वो नाली में पानी के प्रवाह से नाली में बहकर समुद्र में जा रहा है, तो क्या वो शोक करने योग्य है? वो तुच्छ है, क्या शोक करने? आए यार, इतना बढ़िया आम देखो नाली में बहता हुआ जा रहा है समुद्र की खाड़ी में, क्या वो तो तुच्छ है। जो क्षुद्र है, जो तुच्छ है, उसके बारे में क्या शोक करना है? और जो महत है, आत्मा है, चैतन्य है, वो अस्वच्छ है। तो दोनों दृष्टि से शोक करना उचित नहीं था, फिर भी तुम शोक कर गए। इसका मतलब तुमने चिंतन नहीं किया, चिद अनुसंधान नहीं किया। योग वशिष्ठ जी के भगवान वशिष्ठ जी के वाक्य अनुसार नित्य नित्यम चिद अनुसंधीना, इसका मतलब तुमने चैतन्य के बारे में अनुसंधान नहीं किया और जड़ के बारे में भी अनुसंधान नहीं किया। अनुसंधान न करने का फल यह हुआ कि तुमको शोक ने ग्रसित कर लिया, बाधा पहुंचाई। लेकिन आगे ये भी बात कही है, हम लोग यहीं पर गलती कर जाते हैं। गलती क्या करते हैं? देह आदि में आत्मबुद्धि का परित्याग किए बिना आत्मा का चिंतन करने लग जाते हैं। देह आदि में आत्मबुद्धि का परित्याग किए बिना चैतन्य का चिंतन करने लगते हैं, आत्मा का चिंतन करने लगते हैं, ब्रह्म का चिंतन करने लगते हैं, परमात्मा का चिंतन करने लगते हैं और देह आदि के आत्मा का परित्याग, चिंतन का परित्याग करते नहीं है। तो शंकराचार्य जी ने दो बात कही है। एक तो ये कहा नित्यम ज्ञान विग्रहम सधि साक्षिणम सत्य आनंद स्वरूपम, ये सब आत्मा के विशेषण हैं। ऐसे आत्मा का तुम नित्य चिंतन करो। किस रूप में? आत्मा तया खुद के रूप में चिंतन करो। साथ ही देहादि गाम धियाम त्यक्त्वा, देह आदि में जो आत्मबुद्धि हुई थी हुई है उसका परित्याग करते हुए साक्षी का चिंतन करो। अब देख लो, बड़ा विचित्र प्रसंग है। आत्मचिंतन करने के बाद देहादि में आत्मबुद्धि का परित्याग होगा कि देहादि में आत्मबुद्धि का परित्याग करने के बाद चैतन्य साक्षी में आत्मबुद्धि होगी? क्या होगा? हाँ, इसीलिए तो यह साथ साथ कहा। हम ये चाहते हैं कि पहले आत्मा चिंतन करे और आत्मा का ज्ञान होने के बाद तब जाकर देहादि में आत्मबुद्धि छूटे है? हम ये चाहते हैं। और कोई संत ये कहते हैं कि पहले देहादि में आत्मबुद्धि छोड़ो तो ब्रह्म चिंतन करो, ऐसा नहीं। दोनों को साथ साथ का अभ्यास करना होगा, अभ्यास करना होगा। धीरे धीरे देह आदि के प्रति आत्मबुद्धि को छोड़ते भी जाना होगा। जिस अनुपात में देहादि के प्रति आत्मबुद्धि का तुम त्याग करते जाओगे उसी अनुपात में फिर साक्षी आत्मा के रूप में चिंतन बढ़ाते जाना होगा। दोनों एक ही साथ करना होगा, तब फल क्या निकलेगा? तो एक ही साथ साक्षी आत्मा के निश्चय के साथ देहात्मा का सर्वथा परित्याग भी हो जाएगा, दोनों एक ही साथ होगा। हमारे गुरु महाराज जी एक दृष्टांत देते थे इस बात को लेकर। कहते हैं कि कोई एक राजा था, वह उसके पास एक बहुत बढ़िया घोड़ा अश्व था, घोड़ा था। और ये घोड़ा उसके पास ऐसा घोड़ा था कि उसने वाह, जैसे महाराणा प्रताप का घोड़ा, चेतक घोड़ा, लक्ष्मीबाई का घोड़ा है ना, ये नामी घोड़ा रहे ये लोग, चेतक घोड़ा। तो ऐसे ही उस राजा के पास घोड़ा था। उसके मन में ये आ गया राजा को कि मैं एक बार अपने राज्य का भ्रमण करूं घोड़े में चढ़कर। तो घोड़े में चढ़ा और चल पड़ा। चलते चलते दिन का समय, गर्मी का समय, दिन मध्य में किसी गांव के रास्ते, जंगल के रास्ते वह जा रहा था। तो प्रचंड गर्मी के चलते राजा को भी प्यास लगी और घोड़े को भी प्यास लगी। उसके भी पसीना खूब बह रहा था, घोड़े को, उसको भी प्यास लगी थी। अब राजा के पास तो बगल में एक डब्बे में पानी था, तो निकाला, उसने पी ली। अब घोड़े को क्या करेंगे? राजा देखने लगा कि अरे घोड़े को भी प्यास लगी, अब क्या करूं, कहीं पानी हो तो इसको भी पिला दूं। अब कोई एक बोतल के पानी से तो घोड़े का प्यास निवृत्त होने वाला नहीं है, इसके लिए तो बहुत बड़ा खजाना चाहिए, पानी का सरोवर ही चाहिए, मूल चाहिए, ज्यादा पानी चाहिए। राजा चिंतित हो गया और इधर उधर देखने लगा कि कहीं पानी मिल जाए। इतने में गांव में एक किसान, वह रेहड़ से पानी निकाल के अपनी खेती सिंचन कर रहा था। होता है ना, आप समझ गए ना, रेहड़ वो एक यंत्र विशेष होता है कुएं में, उसको जड़ान किया जाता है और बैल को जोड़ दिया जाता है, तो बैल घूमते रहते हैं और वो चेन घूमता रहता है, तो नीचे से डब्बा भरकर पानी ले आता है और जब उलट कर नीचे जाने होता है तो पानी सब उसमें गिरा के जाता है, तो एक नाला बनाया जाता है तो उसी में गिरता है, उससे फिर खेत सिंचन होता है, उसको रेहड़ बोलते हैं। तो किसान वो बैलों के द्वारा वो रेहड़ चलाकर कुएं से पानी निकाल निकाल के अपने खेत को सिंचन कर रहा था। राजा ने देख लिया, ऐ यहां पानी है, चलो अपने घोड़े को पिलाते हैं। तो पानी की तरफ ले गया घोड़ा को, लेकिन वो रेहड़ चलने के चलते खट्टर 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 आवाज आ रही थी। उस आवाज से घोड़ा डर गया, चमक गया घोड़ा, तो पानी तक घोड़ा जावे ही नहीं, डरे चमके। बहुत कोशिश किया, नहीं गया घोड़ा। तो राजा ने कहा किसान को, ऐ ये तेरे जो रेहड़ के खट्टर खट्टर आवाज के चलते मेरा घोड़ा डर गया है, चमक रहा है, बंद करो ये आवाज को। तो राज आज्ञा, गया और बैल को पकड़ लिया और खड़ा कर दिया, रोक दिया, तो आवाज तो बंद हो गया। अब घोड़ा तो आगे बढ़ा, तो जब तक घोड़ा वहां पहुंच गया तब तक पानी बंद। अब राजा कहता कि पानी चलाओ, घोड़े के लिए पानी पिलाना है, पानी चलाओ। तो पानी निकालने के लिए तो फिर बैलों को चलाना पड़ेगा ना। एक डंडे मारा उस किसान ने बैल को, बैल चल पड़ा। जहां बैल चढ़ा तो वो यंत्र खट्टर खट्टर आवाज करने लगा, पानी तो आ गया, घोड़ा फिर चमक के भाग गया, उछलकर भाग गया। राजा फिर लाने की कोशिश करता है, फिर कहता है कि ऐ आवाज बंद करो। किसान ने बैल को रोक दिया, घोड़ा नजदीक आता है तो पानी गायब, पानी चलाते हैं तो आवाज आती है, आवाज आते ही घोड़ा फिर चमक के भागता है। राजा हैरान हुआ। तब उस किसान ने कहा राजा को, राजन ये तुम्हारी गलती है। राजा की क्या गलती है इसमें? बोले तुम्हारी गलती है, जो घोड़ा एक पानी के यंत्र के खट्टर खट्टर को सुनकर डरे, वो रणभूमि में जब गोले चलेंगे तोप के बंदूक के, ये क्या मुकाबला करेगा? ये क्या इस घोड़े से तुम रण जीत सकते हो? बोले इसमें मेरी क्या गलती है? राजा कहने लगा तुम्हारी गलती है, तुम इस घोड़े को जब प्रशिक्षण दे रहे थे, ट्रेनिंग दे रहे थे, वह सुनसान जगह में, एकांत जगह में ट्रेनिंग दे रहे थे। वह सुनसान एकांत जगह में ट्रेनिंग देना ही इस घोड़े के लिए अभिशाप बन गया। घोड़े को ट्रेनिंग कहां देनी चाहिए थी? है? आवाज जहां खट्टर खुट्टर त्राम ढुणम आवाज हो, वहीं इस घोड़े को प्रशिक्षण दिया होता है तो आज ये नौबत ना आती। तो हम साधना करना चाहते हैं और शर्त ये रखते हैं कि एकांत जगह हो तब साधना करें, है ना? हम यही चाहते हैं कि नहीं? कहीं कोई आवाज न हो, कहीं हल्ला न हो, कहीं उल्ला न हो, एकांत जगह हो तो वहां जाकर ध्यान करें, वहां जाकर साधना करें, वहां जाकर आत्मचिंतन करें। बात तो ठीक है, ठीक कह रहे हो तुम, लेकिन जब वहां आत्मचिंतन करके जब यहां आओगे भीड़ भड़ाके में, फिर तुम्हारा हाल क्या होगा? वही घोड़े का ही हाल होगा, होगा कि नहीं? विक्षेप जीव का त्यों आएगा कि नहीं? तो तुम्हारी समझदारी क्या है? समझदारी तो यह है कि भीड़ भड़ाके में ही तुम साधना करो, प्रपंच के बीच में ही रहकर साधना करो, अभ्यास करो, चिंतन करो। और तुम कहते हो कि नहीं, प्रपंच के बीच में चिंतन होगा ही नहीं। ठीक है, एकांत में जाकर चिंतन करो, लेकिन होगा क्या बाद में? तुम फिर विभाग में आओगे तो उस घोड़े की तरह मुसीबत। और भीड़ भड़ाकों में ही तुम चिंतन करोगे, अभ्यास करोगे, तो दोनों को तुम्हें एक ही साथ पैरेलल में अभ्यास करना होगा। भीड़ भड़ाकों में ही चिंतन करोगे तो बाद में भीड़ भड़ाका तुम्हें विक्षेप नहीं कर पाएगा, अन्यथा फिर तुमको वो एकांत ही चाहिएगा, फिर भीड़ भड़का से तुम भड़क जाओगे। महाराज जी ने वो दृष्टांत दिया घोड़े का, किसान ने कह दिया राजन तुम्हारी गलती है, इसमें हमारा कोई दोष नहीं है, घोड़े का भी कोई दोष नहीं है, गलती तुम्हारी है। इस घोड़े को प्रशिक्षण देते समय तुम भीड़ भड़ाके में ही प्रशिक्षण देते तो आज ये नौबत ना आती। तुमको दोनों करते जाना चाहिए एक साथ। क्या? सत्यानंद स्वरूपम ज्ञान विग्रहम धी साक्षिणम आत्मतया चिंतय, नित्यम चिंतय, साथ ही देहातिगाम धियम त्यक्त्वा। देह आदि में तुमने जो पहले आत्मबुद्धि कर रखी है उसको भी छोड़ने का प्रयत्न करते जाओ और आत्मचिंतन का अभ्यास भी करते जाओ, तब फिर तुम सफल हो सकते हो। अन्यथा देहात्म में आत्मबुद्धि का परित्याग किए बिना ब्रह्मात्मा का चिंतन करोगे तो सफलता नहीं मिलेगी। और पहले देहात्म का परित्याग करोगे तो वो संभव होगा नहीं, क्योंकि अनेक जन्मों का अध्यास है, अभ्यास है। इसी बात को आगे बता रहे हैं। देहादो आत्मबुद्धि है चिरम निरूढ़त्वात् निरूढ़त्वात् त्यागो न घटते इति। ये बात ठीक है, देहादि में आत्मबुद्धि अनादिकालीन निरूढ़ हुआ है, दृढ़ हुआ है, शिष्य के इस आशय को समझते हुए गुरु उत्तर देने जा रहे हैं। क्योंकि देहादे अनात्मत्व दर्शनेन तद आत्मत्व बुद्धि त्यागो घटता। देह आदि में अनात्म बुद्धि निश्चय जब तक नहीं करोगे तब तक देहादि में आत्मबुद्धि का त्याग नहीं कर पाओगे। पहले तो देहादि अनात्मा है ये निश्चय करो। देहादि अनात्मा है निश्चय होने के बाद उसमें पहले से हुई हुई आत्मबुद्धि शिथिल हो जाएगा, बाधित हो जाएगा। ये बेकार की चीज है, ये निश्चय किए बिना तुम कैसे छोड़ोगे, छोड़ नहीं सकते। बच्चा एक खिलौनों को लेकर बहुत ही आग्रह करता है, बाप कहता है कि छोड़ दे इसको, बेटा छोड़ने को चाहता नहीं। बेटे को उसमें इष्टत्व बुद्धि है, वो छोड़ना चाहता नहीं। बाप को उस खिलौने में इष्टत्व बुद्धि नहीं, इसलिए बेटे को बार बार कह रहा है कि छोड़ दे। लेकिन जब वो बेटा बड़ा होगा और ये कहेगा अरे ये तो खिलौना है, ये तो खिलौना है, इससे तो कोई प्रयोजन सिद्ध होने वाला नहीं मेरा, तब 18 साल होने के बाद जब लाइसेंस लेगा तब वह तुम्हारी मर्सिडीज की चाबी मांगेगा। उस समय तुम प्लास्टिक की मर्सिडीज जो 4 साल 5 साल के उम्र के समय 10 साल पहले खरीद के दी थी वो ले जाकर दे दो, ले मर्सिडीज, क्या राजी हो जाएगा वो, बोलो। अब पहले उसी 10 साल 12 साल पहले उसी मर्सिडीज के लिए मरे मेटता था, मेरी गाड़ी मेरी गाड़ी, किसी को छूने नहीं देता था। अब 18 साल का हो गया, लाइसेंस मिल गई उसको, कहेगा पापा मैंने लाइसेंस ला लिया अब मेरे पास लाइसेंस हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस, मर्सिडीज की चाबी दो, मुझे गाड़ी चाहिए। तो भी 12 साल पहले जो खरीदी थी प्लास्टिक की मर्सिडीज, ले बेटा तेरी मर्सिडीज। क्यों अब क्यों राजी नहीं होगा वो, क्योंकि निष्प्रयोजनता, इसमें सत्यता नहीं, ये कृत्रिम है, बनावटी है, ये खिलौना है, ये केवल खेल के लिए है, केवल नाम रूप की मर्सिडीज है, चढ़कर कहीं जा नहीं सकते, प्रयोजन सिद्ध नहीं हो सकता, इसी तरह देह को आत्मा मानने का प्रयोजन, तो बच्चों की अवस्था में हमारे जो विचार की प्रौढ़ता जब तक नहीं आती है, तब तक ये देह आदि की सार्थकता और इसकी आत्मता मानकर हम बैठे हुए हैं। जब ब्रह्म चिंतन करते करते चिंतन की प्रौढ़ता हमारे में आ जाएगा, तब तुरंत देहादि में आत्मबुद्धि उसी तरह बाधित होगी जिस तरह वो बच्चे के खिलौने के मर्सिडीज में सार्थकता बुद्धि बाधित हो जाती है। वही अभ्यास करो बेटा। ये बताने के लिए ये 13वां श्लोक शुरू किया शंकराचार्य जी ने। रूपादिमान यत पिंडस ततो नात्मा घटादिवान घटादिवत वियदादि महाभूत विकारित्वं च कुंभवत। रूपादिमान यतः, क्योंकि, यथा शब्द का अर्थ क्योंकि, रूपादिमान पिंड, ये जो पिंड शरीर है, वृष्टि शरीर, पिंड शरीर, दूसरे के शरीर को यानी दूसरे के शरीर को ये आत्मा नहीं है, ये कहना तो आसान है। अपने ही शरीर को ये आत्मा नहीं है कहना थोड़ा कठिनाई आ रही है, यही मुश्किल है कि नहीं बोलो। दूसरे के शरीर की आत्मा नहीं है ये कहना तो आसान है, अपना शरीर भी आत्मा नहीं है ये कहना बहुत कठिन हो रहा है। दूसरे के शरीर है, जिस तरह अपना शरीर ये आत्मा नहीं है ये निश्चय करना हमको कठिनाई है, अभी तक आत्मा है ये निश्चय कर रहे हैं, दूसरे के शरीर भी इसी तरह का निश्चय हो सके तब तो कोई हर्जा नहीं। अब यही कहा भी है नीतिकारों ने, अरे भाई या तो अपना शरीर भी आत्मा नहीं है निश्चय करो, या फिर अपना शरीर जिस तरह तुम आत्मा मान रहे हो दूसरे के शरीर भी आत्मा है निश्चय करो। ये निश्चय हो जाए तो कोई पशु हत्या न हो, है? कोई हिंसा न हो। अब यहां हिंसा क्यों होती है? क्योंकि हिंसा करने वाला अपने शरीर को तो आत्मा मान रहा है, दूसरे के शरीर को आत्मा नहीं मान रहा है, इसलिए हिंसा किए जा रहा है वो। या तो फिर अपने शरीर को भी आत्मा न मानो ना, अपने शरीर की भी हत्या करने तैयार हो जाओ। अपने शरीर की हत्या करना कोई तैयार नहीं होता है, दूसरे के शरीर को आसान से हत्या कर देता है। नीतिकार ने कहा आत्मना प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत। अरे भाई अपने को जो प्रतिकूल हो वह दूसरे को भी प्रतिकूल ही होगा, ये निश्चय क्यों नहीं करते हो? और केवल अपने को प्रतिकूल मानते हो, दूसरे के प्रतिकूल को तुम ध्यान नहीं देते हो, इसीलिए दूसरे को प्रतिकूल हो रहा है नहीं हो रहा है, है? आखिर उसको भी तो प्रतिकूल है वो, तो दूसरे से भी वो व्यवहार मत करो जो तुम्हारे प्रतिकूल होता हो। कोई मुझे गाली देता है तो वह मेरे लिए अनुकूल है कि नहीं, मेरा इष्ट है कि नहीं कोई मुझे गाली दे? जब कोई मुझे गाली दे ये मेरे इष्ट नहीं है तो तुम किसी को गाली कैसे दे सकते हो, है? लेकिन हम दूसरे को गाली तो आसान से दे डालते हैं, और अपने को कोई गाली देता है तो बवाल खड़ा कर लेते हैं। अपनी कोई चोरी कर लेता है तो हम बवाल खड़े कर लेते हैं, और दूसरे की चोरी हम आसान से कर डालते हैं। ये प्रसंग शंकराचार्य जी कहते हैं, ये जो पिंड है रूपादिमान है, रूप रस गंध स्पर्श आदि विषय है, विषयों से बना हुआ है, ये इंद्रियों के विषय है। रूपादिमान शरीर आंख से दिख रहा है, शरीर हाथ से छोया जा रहा है, स्पर्श से हो रहा है। रूपादिमान्यतः पिंडस्ततो न आत्मा, ये विचार करो। घटाधिपत जैसे घट आदि इंद्रिय ग्राह्य हैं, इंद्रियों से इंद्रियों के विषय बनता है घट, आधिपत से और भी ले लो, और जो इंद्रियों का विषय बनता है वो आत्मा नहीं हुआ करता। जैसे घट आंख से दिखाई पड़ा घट, तो वह आत्मा नहीं है। इसी तरह शरीर आत्मा इंद्रियों से दिखाई पड़ा, इसका मतलब पिंड इंद्रियों से दिखाई पड़ा, इसका मतलब आत्मा नहीं है। रूपादिमान यतः पिंडस ततो न आत्मा घटाधिवत, इसी तरह जैसे पिंड में तुमने ये विचार की, उसी तरह ब्रह्मांड के बारे में भी विचार करो। वेदादि महाभूत, आकाशादि ये जो महाभूत हैं समष्टि, विकारित्वाच्च कुंभवत, विकारी शब्द का अर्थ होता है कार्य, विकार का अर्थ होता है कार्य, जहां कार्यता है वहां विकारता है। घट विकारी है यानी मिट्टी का कार्य है, इसी तरह पिंड विकारी है, पिंड शरीर क्या है विकारी है, पंचमहाभूतों का कार्य है। इसी तरह पंचमहाभूत जो विकारी है, क्योंकि वह भी परस्पर एक दूसरे के कार्य है, आकाश भी विकारी है क्योंकि वह भी अहंकार का विकार है, वायु भी विकारी है क्योंकि वह आकाश का कार्य है, पंचदशी में पड़ी रहे हो स्वाध्याय में, इसलिए तेज भी विकारी है क्योंकि वह वायु का कार्य है, जल भी विकारी है क्योंकि वह तेज का कार्य है, पृथ्वी भी विकारी है क्योंकि वह जल का कार्य है। अब उसी पृथ्वी से बने हुए सभी वस्तु घट भी विकारी है क्योंकि मिट्टी का कार्य है। अब ये पांचों भूत जब विकारी होने के कारण अनात्मा सिद्ध हुए, तो इन्हीं पांच भूतों से बना हुआ शरीर कैसे आत्मा हो सकता है? विकारित्वात् घटवत् न आत्मा भवितुम् अर्हति। केवल पिंडस्य अनात्मत्व दर्शन मात्रेण, अब गुरु ने कहा पिंड माने स्थूल शरीर अन्नमय कोष, यह आत्मा नहीं हो सकता क्योंकि ये कार्य है विकारी है, जैसे घट, घट आत्मा नहीं हो सकता, इस तरह शरीर आत्मा नहीं हो सकता। तो शरीर आत्मा नहीं हो सकता है तो फिर आत्मा क्या है? तो मुझे आत्मा क्या है वो स्पष्ट बता दीजिए महाराज। यहां एक मस्तों में शिष्य उवाच होना चाहिए, यह श्लोक शिष्य का प्रश्न है। शिष्य कह रहा है गुरु से, यदि पिंडो अयम पिंड, यदि अयम पिंडा अनात्म उक्त हेतु बलान मत उक्त हेतु माने विकारित्व हेतु के बल से आपने इस पिंड देह को अनात्मा है करके सिद्ध किया। यदि ये पिंड देह विकारित्व हेतु के चलते ये अनात्मा है ये सिद्ध हुआ है तो कोई बात नहीं, हम अनात्मा ही मानेंगे। सही आपने कहा, हम मानेंगे। लेकिन ये मेरा अनुरोध है महाराज, करा मलकवत साक्षात आत्मानं प्रतिपादय, तब मेरे सामने आप सीधा साधा आत्मा का इस तरह प्रतिपादन करिए कि हाथ में रखे हुए आंवले की तरह स्पष्ट हो जाए। यह आंवला है, जैसे आत्मा रखे हुए आंवला के बारे में, आंवला है नहीं है किसी को शंका नहीं होती है, स्पष्ट है। करामलकवत हाथ में रखे हुए स्वच्छ जल की तरह, निर्मल जल की तरह, कोई शंका कोई संशय विपर्यय रहता नहीं, स्पष्ट होता है। तो पिंड शरीर आदि अनात्मा है ये तुम्हारे तर्क से सिद्ध हुआ है तो चलो मैं मानता हूं, लेकिन मुझे कृपा करके हाथ में रखी हुई आंवले की तरह आत्मा क्या है स्पष्ट बता दो। शिष्य पूछ रहा है, अनात्मा यदि पिंडो अयम उक्त हेतु बलान मतः करामलकवत साक्षात आत्मानं प्रतिपादय। अब शिष्य ने पूछ लिया है तो फिर बताना जरूरी है, आंवला ही हो तो हाथ में ही रखकर बता दें, ये आंवला है नहीं, इसमें हाथ में रखकर तो बताया नहीं जा सकेगा। लेकिन विचार रूपी बुद्धि में तो स्पष्ट आ जाए इस तरह तो बताया जा सकता है, है? हाथ में रखकर ये आंवला है करके तो बताया नहीं जा सकता आत्मा को, लेकिन बुद्धि रूपी विचार के सामने स्पष्ट ये आत्मा है करके बताया तो जा सकता है कि नहीं, जा सकता है, इसीलिए उसका प्रयत्न कर रहे हैं। बुद्धि में स्पष्ट आना चाहिए, हाथ में नहीं, क्योंकि जिस हाथ में आंवले को रखने जा रहे वो हाथ ही अनात्मा है तो फिर कहां से आत्मा हाथ में आएगा, इसलिए बुद्धि में आना चाहिए, बुद्धि से निश्चय कर लेना चाहिए। वो युक्ति बता रहे हैं, घटद्रष्टा घटाद भिन्नः सर्वथा न घटो यथा देहद्रष्टा तथा देहो नाहम इत्यवधारय। हे शिष्य, एक युक्ति में तुम्हें बता रहा हूं, वो युक्ति यह है, जैसे घटद्रष्टा घटाद भिन्न सर्वथा घटाद भिन्न, घट को देखने वाला व्यक्ति, घट को जानने वाला व्यक्ति सर्वथा घट से भिन्न होता ही है। बोलो शिष्य, होता है कि नहीं? शिष्य कहेगा होता है महाराज, है घड़े को सामने रखा, ये क्या है? बोले महाराज ये तो घड़ा है। अच्छा घड़े को तुमने जाना कि नहीं? बोले जाना महाराज, ये घड़ा है हम जानते हैं। बोले तुम घड़ा हो कि घड़ा तुमसे अलग है? बोले महाराज घड़े को मैंने जाना इसलिए घड़ा मेरे से अलग है। ये बात तो करामलकवत है कि नहीं बोलो, है? इतनी तो करामलकवत है कि नहीं? घट द्रष्टा घट से सर्वथा भिन्न होता है, ये बात तो तुम्हारी बुद्धि में करामलकवद स्पष्ट हुआ है कि नहीं हुआ है महाराज? न घटो घटद्रष्टा घटो न भवती, घटद्रष्टा घट नहीं होता है, घट से भिन्न ही होता है। इसी तरह बेटा देह द्रष्टा तथा देहो, तुम अपने शरीर को जानते हो कि नहीं बोलो? अपने शरीर को नहीं जानते हो, अपने देह को नहीं जानते हो? हैं? हर व्यक्ति अपने देह को जानता है, अपने शरीर को जानता है। तो देह द्रष्टा, तो देह को तुम जानते हो तो तुम हो गए देह द्रष्टा, देह हो गया दृश्य। अब जहां घट द्रष्टा घट से भिन्न है, तुम द्रष्टा हो गए, घट दृश्य हो गया, द्रष्टा दृश्य से सर्वथा भिन्न है, इसी तरह तुम अपने शरीर को जानते हो कि नहीं? जानते हो तो तुम देह द्रष्टा हो गए, देह दृश्य हो गए। देह द्रष्टा अपने दृश्य से भिन्न होता है, तो इसका मतलब हो गया तुम देह से भिन्न हो गए कि नहीं? या तो तुम ये कहो कि मैं देह को नहीं जानता अपने को जानता हूं कहो, या तो तुम ये कहो कि मैं शरीर को नहीं जानता मैं अपने को जानता हूं, तुम कहो। तो हम पूछेंगे कि तुम अपने को जानते हो, तुम्हारा शरीर कहां है? शरीर को नहीं जानते हो? बोले नहीं। तो कहां है शरीर? बोले यही तो है हमारा। तो जानते हो? बोले हां। फिर कैसे देह तुम हो एक हुए, देह से भिन्न हो गए कि नहीं? न अहम, ये देह दृश्य हो गया, मैं देह का दृष्टा हो गया, इसलिए मैं देह नहीं हूं। इति अवधारय, अवधारय माने चिंतन करके निश्चय करो। अवधारणा, अवधारय माने निश्चय करो। हाँ, ये निश्चय करने का ही यहां महत्व है, और निश्चय तभी होगा जब नित्य निरंतर अभ्यास करोगे। और आगे क्या कहेंगे कल देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।